है स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आओ दर्शन
आया हूँ शरण तिहारे,
आया हूँ शरण तिहारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के। सागर में जीवन नैया,
भव सागर में जीवन नैया,
डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले। निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, हे प्रभु मेरे सहारे,
हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के,
हे प्रभु यीशु प्यारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के।
कदम कदम पर अंधियारा है,
कदम कदम पर अंधियारा है।
सूझत नाही मोहे, सूझत नाही मोहे। जीवन की तू ज्योत जला दे, जीवन के उजियारे,
जीवन के उजियारे।
प्रभु यीशु प्यारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आओ दर्शन भिक्षा दे दो।
आया हूँ शरण तिहारे,
आया हूँ शरण तिहारे।
जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के,
जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के,
जाओ कहाँ तेरा
द्वार छोड़।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि यूहन्ना दर्शन में देख रहा था और सुन भी रहा था। उसने देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत परमेश्वर के दासों पर मुहर लगाने निकला। यूहन्ना ने देखा कि उसने इसराइल की संतानों पर मुहर लगाई जो प्रत्येक गोत्र में से 12,000 थे। इस प्रकार इसराइल की संतानों में से 144,000 पर मुहर लगाई गई। मेरे प्रियो, इसके आगे आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे सामर्थ्य और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर, जंगलों में, गांव में, पहाड़ों में और शहरों में रेडियो के निकट बैठे आपके वचन को सुनने का इंतजार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आपका वचन अधिकाई से उनके जीवन से बोलने पाए, बातचीत करने पाए, उनके जीवन को बदलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हर एक के जीवन को आप बदल दें। इस समय हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश और चिंता में हैं, तनाव में हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को लेकर, पापमय जीवन को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर। पिताजी, आप उन पर भी दया दृष्टि करें ताकि उनका जीवन आप में आनंदित होने पाए। आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, अब हम आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद उसने अर्थात यूहन्ना ने देखा कि परमेश्वर के सिंहासन पर मेमने के सामने एक विशाल जनसमूह है जो संसार की सब भाषाओं और जातियों में से है। वे अपने उद्धार के लिए परमेश्वर और प्रभु यीशु मेमने का जय जयकार करती थी। उन प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना को वस्तु स्थिति का ज्ञान प्रदान करना चाहा। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 13 से 15 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेरे प्रियो, यह अंश धर्मशास्त्र का एक अति जागृतिदायक भाग है। एक प्राचीन यहुना के पास आता है और कहता है, यहुना, ये लोग जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं कौन हैं? और तब यहुना कहता है, स्वामी, तू ही जानता है। आगे कहता है, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। यदि वे कलीसिया होते तो यहुना उन्हें पहचान लेता। उसने अपनी कलीसियाओं को पत्र लिखे थे। वह कलीसिया के बारे में जानता था। वह विश्वासियों की देह के बारे में भी जानता था। उसने उन्हें प्रेम के बारे में लिखा था, प्रेम जो उन्हें जोड़ने वाला एक महान बंधन है। परंतु यहुना इस जनसमूह को नहीं जानता था। कलीसिया का वह प्रतिनिधि जो स्वर्ग में एक प्राचीन है, जानता था कि वे कलीसिया नहीं है। वह तो एक सर्वथा भिन्न समुदाय है। ये वे लोग थे जो महाक्लेश से निकल कर आए थे। क्या इससे आपको स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी? जी हाँ, यह जनसमूह संसार की सब जातियों, भाषाओं और कुलों में से था जो महाक्लेश से निकलकर आया था। मेरे मित्रों, हमारे आज के युग में परमेश्वर मानव जाति में विभाजन करता है। एक विभाजन उद्धार प्राप्त और उद्धार रहितों का है। निसंदेह यह मानव जाति का एक महान विभाजन है। अब यदि आप मनुष्यों के जाति विभाजन और समुदायों के विभाजन के बारे में कहें, तो बाइबल परमेश्वर के वचन में इस विषय में भी कुछ कहने को है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि समुदाय तीन हैं, यहूदी, अन्य जाति और परमेश्वर की कलीसिया। उन्हें इनमें से किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। यह धर्मशास्त्र में व्यक्त मानव जाति का विभाजन है। यह विभाजन यहूदी, अन्य जाति और कलीसिया है, आज तक बना हुआ है। मेरे प्रियो, महाक्लेश में केवल दो ही समूह हैं, यहूदी और अन्य जाति। परमेश्वर की कलीसिया कहाँ है? वह अपने प्रभु यीशु के पास स्वर्ग में है। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य में हम घटना प्रति घटना आगे बढ़ते हैं। तो कलीसिया उस संपूर्ण समय में स्वर्ग में है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय के 13 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यहूदी और अन्य जाति दोनों ही में से अपने नाम के निमित्त एक जाति बुला रहा है जो सर्वथा भिन्न है, अर्थात कलीसिया, जो इस संसार से उठा ली जाएगी। आज कुछ लोगों के विचार मुझे पसंद नहीं। वे निराशावादी होकर कहना चाहते हैं कि परमेश्वर असफल हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ठीक वही कर रहा है जो उसने कहा था। कि वह करेगा कि इस युग में वह अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार करेगा। वह इस क्षेत्र में हमारी कल्पना से कहीं अधिक अच्छा काम कर रहा है। अपनी कलीसियाई सेवा में तो मैं सोचता था कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, परंतु रेडियो सेवा में मैंने देखा है कि संपूर्ण विश्व में असंख्य लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अन्य सुसमाचार प्रचारकों का भी यही कहना है। परमेश्वर इस संसार में से अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार कर रहा है। जी हाँ, यूहन्ना स्पष्ट करता है कि यह जन समूह जो उसने देखा वह कलीसिया नहीं है। वे महाक्लेश से अर्थात महासताव से निकल कर आने वाले मनुष्य हैं। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह शब्द महाक्लेश प्रभु यीशु का है। आप सोच रहे हैं कि यह किसी मनुष्य की कल्पना है। जी नहीं, यह प्रभु यीशु द्वारा दिया गया नाम है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 21 पद में वह कहता है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। मूल भाषा में महान और क्लेश दोनों शब्दों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है जो बल को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी बात है जैसी दूसरी नहीं है। मेरे प्रियो, मैं फिर कहता हूं, एक प्राचीन ने पहली पूछी और यूहन्ना के पास उत्तर नहीं था। यदि वे कलीसिया थी तो यूहन्ना उन्हें निश्चय ही पहचान लेता, परंतु इन्हें वह नहीं जानता था। ये लोग महाक्लेश से निकले उद्धार प्राप्त मनुष्य थे। उनके वस्त्र श्वेत थे, जो प्रभु यीशु की धार्मिकता है। उन्हें प्रभु यीशु की धार्मिकता कैसे मिली? प्रभु यीशु ने लहू बहाया उसके द्वारा से। जी हां, आप और मैं परमेश्वर के समक्ष खड़े हो पाएंगे तो इसका एकमात्र कारण है कि प्रभु यीशु ने हमारा पाप का दंड अपने ऊपर में ले लिया। वह मर गया कि आप और मैं जीवित रहें। यह सच है कि परमेश्वर के पास मनुष्य के उद्धार का एक ही मार्ग है, और वह है प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 1-4 पद में पौलुस कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि यह अंगीकार उसने अपनी कल्पना से नहीं बनाया है। उसे यह सब कुछ दिया गया था और वह इसे विश्वासियों में पहुंचाता है। प्रभु यीशु ने उसे अरब के रेगिस्तान में 2 वर्ष तक यही काम सिखाया था और परमेश्वर उसे बातचीत करता था। मेरे प्रियो, सुसमाचार यह है, प्रभु यीशु धर्मशास्त्र अर्थात पुराने नियम के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया और दफन किया गया, और धर्मशास्त्र के अनुसार वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। सुसमाचार परमेश्वर द्वारा कुछ करने की मांग नहीं है। यह परमेश्वर आपसे कहता है कि उसने आपके लिए कुछ किया है। सुसमाचार में आप परमेश्वर को कुछ नहीं देते हैं। जी हां, परमेश्वर आपको कुछ देता है। परमेश्वर का वरदान है। मसीह यीशु में हमारा अनंत जीवन, यह आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ विश्वास के द्वारा। वरदान पाने की विधि यही है। मान लीजिए कि आप बड़े दिन पर अर्थात क्रिसमस के समय पर आकर मुझसे कहते हैं, प्रिय भाई, आपके लिए मैं यह उपहार लाया हूं। उस उपहार को ग्रहण करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या मैं आपसे कहूंगा कि मैं आकर आपके घर की सफाई करूंगा? आप कहेंगे, नहीं, यह आपके लिए उपहार है, मैं आपसे काम नहीं करवाऊंगा। यदि मैं आपके उपहार की कीमत चुकाने का प्रयास करूं तो वह आपका अपमान होगा। परंतु आज हम उलझन में पड़ गए हैं। सुसमाचार हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है, उसका उपकार है, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। इफिसियों के पत्र 1:7 में पौलुस लिखता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर के पास अपार अनुग्रह है। आप जो भी हैं वह आपका उद्धार करेगा। आप सोचते हैं कि आप घृणित पापी हैं, बहुत बुरे हैं, वह ऐसों ही का उद्धार करता है। हम सब ऐसे ही थे, हम पाप में डूबे हुए थे, हम सबके जीवन में कुछ भी अच्छाइयां नहीं थी। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए आया। अतः ये असंख्य अन्य जाति कलीसिया नहीं है। हमें उद्धार प्राप्त लोगों के विषय अपनी मानसिकता को इतना विस्तृत करना है कि वह कलीसिया और निश्चय ही आपके अपने गुट की सीमाओं से पार हो जाए, आपको ले जाए कि आप कहां पर हैं। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7:15-17 में लिखा हुआ है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, अब हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वह कलीसिया नहीं है, क्योंकि कलीसिया को मंदिर से कभी नहीं जोड़ा गया है। इस पुस्तक के अंत में कलीसिया नई यरूशलेम में है और वहां मंदिर नहीं है। कलीसिया के लिए मंदिर नहीं है। जी हां, मंदिर इस पृथ्वी पर होगा। स्वर्ग में जहां कलीसिया है वहां मंदिर नहीं है। अतः यह जन समूह कलीसिया नहीं है। आगे लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। यह उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है। इस जन समूह में से अधिकांश जन शहीद थे जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपनी जान दे दी थी। यद्यपि हमें यह तो स्पष्ट नहीं कहा गया है, परंतु उन्हें स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष उपस्थित दर्शाया गया है। अब जिन बातों का उल्लेख किया गया है वे सब उनके कष्टों का कारण रही हैं। वे भूखे प्यासे रहे थे परंतु अब नहीं होंगे। वे चिलचिलाते धूप में रहे थे, उन्हें आत्मिक बातों की भी भूख थी, कष्टों के कारण वे रोते थे। परमेश्वर उनकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा महाक्लेश को सहन किया है। ये लोग जिन्हें हमारे सामने प्रकट किया गया है वे एक अद्भुत जन समुदाय हैं। मेरे प्रिय श्रोता मित्रों, प्रभु यीशु की अन्य भेड़े भी हैं। उसने अपने शिष्यों से कहा था, परंतु वे समझ नहीं पाए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 16 पद में, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, अन्य जातियों के इस समूह में और भी भेड़े हैं जिनका उद्धार किया गया है, परंतु वे कलीसिया में नहीं है। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों को ढूंढ रहा है, और जो कोई प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है वह उसकी भेड़शाला में शामिल हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आज आप उसकी भेड़शाला में हैं? क्या आप उस असीम शांति को प्राप्त कर चुके हैं? क्या आपने उद्धार का आनंद प्राप्त कर लिया है? प्रभु यीशु आपके जीवन में उद्धार का उपहार दे रहा है, क्या आप चाहते हैं कि आप उसे ग्रहण करें? यदि हाँ, तो आपको आकर के उसे स्वीकार कर लेना है। उसके लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके जीवन के उन पापों के लिए कीमत चुका दिया है। उसने अपने आप को आपके पापों के बदले में क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि आप जीवन पाएं और अनंत जीवन पाएं। मेरे प्रियो, निर्णय आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।